प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री निजानंद स्वामी बोलो श्री सद्गुरु महाराज बोलो श्री निजानंद संप्रदाय सर्व सुंदर साथ श्री महामति कहे लिया मांग के ए धनिये दिखाया छल जो सन्मुख रैसी धनी धाम सो सो कहसी छल को बल सो कैसी छल को साथ जी पहचानियो ए वाणी समया फजर हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर खोल प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी आप पार ब्रह्म अक्षातीत धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी हम सुंदर साथ को भूले पड़े हैं माया में ना ये सुध रही हम कौन हैं ना ये सुध रही हम आए कहाँ से हैं ना ये सुध रही कि यहाँ आए क्यों हैं किसने भेजा है और फिर चलना कहाँ है। बिल्कुल संसार के लोगों की तरह से जैसे वो लोग अपने देवी देवताओं का तीर्थंकर अवतारों का उत्सव मनाते हैं सुंदर साथ भी भूल गए और ये कुछ साल ही पहले से हुआ। भारत में भी कोई पहले प्राणनाथ जी का जन्म नहीं मनाता था और हुए कोई ट्रस्ट इकट्ठे अरे भाई राम जयंती होती है कबीर जयंती होती है गुरु नानक देव जयंती होती है और अपने को भी प्राणनाथ जी की जयंती मनानी चाहिए। किसी ने विचार नहीं किया कबीर एक तन का नाम था वो जन्मा कृष्ण एक तन का नाम था वो जन्मा राम भी एक तन का नाम था जन्मा। और सोचना ये है कि क्या प्राणनाथ जन्मे थे मैं राय ठाकुर जन्मा था केशव ठाकुर जी के घर उनके पांच लड़के थे एक लड़के का नाम मैराज ठाकुर था। 40 वर्ष की आयु के बाद जब हफ्से में गए तब राज्य महाराज युगल स्वरूप ने दर्शन दिया और उनके अंदर विराजमान हुए। उस दिन से बने प्राण वो फिर उनका तन नहीं रहा। उस अक्षातीत पारब्रह्म ने स्वयं कहा ऐ सुंदर साहब जी इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग के अब ये जो तन है ये मैंने धारण कर लिया है अब ये मेरा है। इंद्रावती मेरा अंग जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती तायपरे में रमाड़ो के जो अब इसको इंद्रा मेराय ठाकुर का तन ना समझे और समझे कि मेरे प्राणनाथ श्री राजिम राज इसके अंदर विराजमान है ताय प्रेम उसको परम धाम के सब सुख सब पहचान यही। फिर वो कहते हैं मेरा दिया मैं दिवाया मैं इंद्रावती के सुख दियों सुख लियों और सुखें जगायों साथ इंद्रावती को खाली उपमा दे मैं अपने उपमा दे रहा हूं इसको क्योंकि इसके तन में बैठा हूं। तो इसी तरह से कभी भी भूल कर प्राणा जी के जन्म न मना। और फिर कृष्ण जयंती जो है दुनिया वाले मना, हमारा उससे मतलब क्या है? इन चक्रों में पड़ो ही मत। हाँ, स्वामी जी का प्रकटन महोत्सव है, मना सकते हैं। प्रकट होना और चीज है और जन्म मनाना और चीज है। अब इस तरह से साथ जी पहचानियो। पहचानना क्या है कि आखिर आज दिन तक जब से ये ब्रह्मांड बना, कितने हिंदुओं के तीर्थंकर आए, कितने अवतार आए। भगवान विष्णु के भी 21 अवतार हुए, जिसमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, अवतार हैं। तो उधर मुसलमानों के भी 1,20,000 पैगंबर हुए, ईसाइयों में भी ईसा मूसा दाऊद हुए, सिखों के अंदर भी 10 गुरु हुए। क्या किसी ने, बस ये चीज दिमाग में बिठाओ, क्या किसी ने आज दिन तक आके ये कहा कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं? फिर कहने को अगर कोई कहता है तो क्या उन्होंने जो वक्त आखरत को उस पार ब्रह्म की विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की औलखान लिखी है, क्या कि पार ब्रह्म जो अक्षातीत होगा वो सब हिंदुओं के, मुसलमानों के, बाइबल के और सब धर्म ग्रंथों का सार निकाल के सबको एक करे? अब उठाओ, अगर हिंदुओं के कोई भी भगवान आए तो वन साइडेड रहे हिंदुओं के बस, और उनको कोई मुसलमान मानने को तैयार नहीं। इस तरह से मुसलमानों के अंदर जो आए तो वो भी एक पक्षीय वन साइडेड रहे, मुसलमानों के अतिरिक्त उनको कोई मानता नहीं। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जो ईसा मूसा दाऊद इत्यादि और जितने भी उनके सेंट हुए वन साइडेड रहे, उनको कोई और मानता नहीं। अब ये कौन है, बस इसको मगज में बिठा लो, सब संशय खत्म हो जाएगा। 1735 में पहले से लिख रखा था ग्रंथों में कि जब 1735 का वर्ष आएगा, साका सालवान का, साका कहते हैं सम्मत को, 1600 पूरन चल रहा होगा, तब कुंभ के मेले में वह पार ब्रह्म विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में आकर के जाहिर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत 12वें स्कंद में क्या लिखा है कि कलयुग में वह पार ब्रह्म निष्कलंक अवतार के रूप में आएंगे। नंबर 3, कुरान में चलिए। कुरान के फरदा रोज एक चैप्टर का नाम है, सोरा उल फजर, वो 11वीं सदी में होगी। और 11वीं सदी में खुद खुदा अल्लाह ताला आखिरी जमाने का मालिक बनकर, खामिद बनकर दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। वह 11वीं सदी कब थी? जब स्वामी जी हरिद्वार गए 938 में, देवचंद जी का प्रादुर्भाव, हम परम धाम से आत्माएं आई। और फिर जब हरिद्वार में गए तो 1735 था, आफ्टर 100 ईयर, वो 10वीं सदी कंप्लीट नहीं हुई थी, 10 ईयर बाकी थे। और 100 साल और लगा दो तो 11वीं सदी हुई। 11वीं सदी को फरदा रोज कहते हैं। फिर उसके बाद वहां मुसलमानों को कोई हिंदुओं के ग्रंथों तो नहीं समझाया भाई। कुरान, कुरान के अंदर जो कुछ मोहम्मद साहब ने लिखा था, सबसे बड़े निशान, मोटी मोटी चीजें बंदा याद रखता है कि जब पार ब्रह्म अक्षातीत आएंगे तो 7 निशान क्यामत के जाहिर हो जाएंगे। आज किसी मुसलमान को जाके पूछो कोई बता ही नहीं सकता, सिर्फ यही कह देंगे जी हम इन पर टॉक नहीं कर सकते, हमारे से बात है। इसी तरह से हिंदुओं के ग्रंथों में जो लिखी हुई बातें हैं, जो हमें राजीव राय ने आके बताया एज लाइक वृंदावन, और उसके बाद भागवत गीता के हिसाब से उत्तम पुरुष पारायण, और इसी तरह से हर ग्रंथ के अंदर जैसे कृष्ण ने भी कहा गीता के अंदर अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य गलान अर्भवति भारत, तब धर्म के उत्थान के लिए मैं आके हर युग में आऊंगा युगे युगे। तो फिर कलयुग में जितना अत्याचार और धर्म का नाश हो रहा है तो कृष्ण क्यों नहीं आए? थिंक ओवर डीपली, क्यों इस कलयुग में केवल पूर्ण ब्रह्म ही आएगा और कोई आएगा? कितने ठोस बात है, गीता में कहा ना यदा यदा ही धर्म सकलान भक्ति भारत, अब आएगी? सीधी सादी बात है, क्योंकि इस कलयुग में जो आएगा वही पूर्ण ब्रह्म होगा, ये उनकी सबसे बड़ी निशानी, और पीरियड भी हर एक का दे रखा है उधर, हरवंश प्राण में भविष्य प्राण में क्या दे रखा है, अभावी नो भविष्यन्ति मुनियों ब्रह्म रूपना। ऐ दुनिया वालों, कलयुग के अंदर एक अनहोनी बात होने वाली है जो कभी आज दिन तक दुनिया में हुई नहीं। भावी तो कहते हैं होने वाली बात भी होना है, वो टल नहीं सकती। अभावी जो कभी भी ना हुई थी और ना फिर कभी होगी, वो बात कलयुग में होगी। क्या होगी? अभावी नो भविष्यन्ति मुनियों ब्रह्म रूपना, के पार ब्रह्म और उनकी आत्माएं जो उनका ही स्वरूप होंगी कलयुग में आएंगी। उनकी पहचान क्या होगी? प्रधान पुरुषया, कि वो जो प्रधान पुरुष उत्तम पुरुष अक्षरातीत पारब्रह्म हैं, उनके बिना वो किसी का आश्रय पूजा करेंगे नहीं। जैसे दुनिया वाले सब जगह पूजा करने चले जाते हैं, क्यों? अरे सब भगवान तो एक ही हैं, एक लक्ष्य रहता सब, भगवान एक नहीं है, भगवान अनेक हैं, और उनके पास अलग-अलग अलग-अलग शक्ति है। हर भगवान के पास एक जैसी शक्ति नहीं है, किसी को पुत्र देने की शक्ति है, किसी को माया देने की शक्ति है, किसी को कोई देने की, जैसे मिनिस्टर होते हैं जुदा जुदा पोर्टफोलियो उनके पास होते हैं लाइक दैट। और जो सर्वे सर्वा स्वयं है पूर्ण ब्रह्म, वह ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म और किसी के साथ भी क्या शब्द लगा तो बता चुका हूं। वैसे स्वयं राम भगवान कहते ना भाई मैं पार ब्रह्म नहीं हूं, उधर कृष्ण कहते ना मैं तो क्षर पुरुष हूं, उत्तम पुरुष तो जुदा है। इतना सुनने समझने के बाद भी हम यदि दूसरे भगवानों का पूजन करते हैं या वहां, अब हमारा मतलब क्या है? क्वेश्चन इज दिस, हाँ जब तक नहीं समझ थी बराबर हर एक सुंदर साथ भटका रहा, हम भी भटके रहे जब तक सतगुरु महाराज जी के चरण नहीं मिले 51 से पहले, कोई बात नहीं। पता जब नहीं था, क्या मतलब जब पता नहीं होता तो लाइक अंधारा डार्कनेस थी, कैसे जैसे रात्रि के समय में कितनी लाइट्स होल वर्ल्ड में बल्ब जलते होंगे और खेतों में लोग माचिस डीएसएलआई जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, गैसेज जलाते हैं, कितनी कैंडल्स जलती हैं, और उसके इतना ही नहीं आकाश में कितने तारे होते हैं, फिर एक चंद्रमा भी होता है, इतने मिल के जग जाने के बाद भी फिर भी रात की रात। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक निकलता है सुबह, सूरज एक ही होता है, एक निकलता है, सब जितने भी चंद्रमा तारे लालटने सब अपने आप ऑटोमेटिक बूझते चले जाते हैं, कोई कहता तो नहीं। इसी तरह से एक पार ब्रह्म आया है, अब कोई आ नहीं सकता, ठोस। कोई भी बात करे उनको भी, जब कृष्ण ने कहा था मैं आऊंगा, सब भगवानों ने कहा था हम आएगा, आते क्यों नहीं, क्यों नहीं आए? अगर और कोई आता तो फिर बात थी भी, हाँ यही अक्षर थी। लेकिन हमारे मगजों में हर एक धर्म के अंदर अपने ही भगवान को हर कोई पूर्ण ब्रह्म जबरन बनाए बैठा है, जबकि भगवान कहते हैं ना भाई हम पार ब्रह्म नहीं। ये भ्रांति का मतलब क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि वी आर इन डार्कनेस, अंधेरे के अंदर है। अब स्वामी जी हमें सुंदरता को क्या कह रहे हैं, साथ जी पहचानी हो, ये वाणी क्या है, ये डार्कनेस वाली वाणी नहीं है, ये वाणी समय फजर मॉर्निंग टाइम जब आता है तो अंधेरे सब खत्म हो जाते हैं। फजर मैंने प्रातः काल, सूर्य उदय होने से पहले जब लाल ईमान निकलनी शुरू होती है सब बिल्कुल अंधेरा भाग जाता है। कहते हैं ये वाणी संसार के सब ग्रंथों के अंधकार को मिटा कर जो आज दिन तक ये नहीं बता सके पारब्रह्म कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसका धाम कहाँ रहता है, करता क्या है। मामूली से चार क्वेश्चन है। कभी भी किसी गुरुओं के पास, किसी धर्म वालों के पास पढ़े, को भी जब कहते हैं परमात्मा एक है तो एक कौन है ये बताओ, फिर उसका स्वरूप क्या है। और हम सुंदर साथ भूले रहे आज दिन तक, और हम भी कहते रहे अजी किसको मानते हो, अजी श्री कृष्ण जी को मानते हैं, वो 11 साल और 52 दिन बाद। अब सोचो कितने भूल में थे। अगर ये वाणी हमको इतनी ना मिलती हम भी उसी को कहते रहते, और 11 साल और 52 दिन वाला कहाँ है योग माया में बालमुकुंद जी, कहाँ परम धाम, और कहाँ हम किसको मान के बैठे हुए थे। अंधारा था, अज्ञानता थी, नहीं पता चला था। अब हुआ समय फजर, ए वाणी ने आके सब संशय मिटाकर सब अंधकार मिटा दिए। इस वास्ते सुंदर साहब जी सारा महीना आपको कहा वाणी के बिना कुछ नहीं, वाणी के बिना कुछ नहीं। जो सुंदर साहब नहीं पढ़ते वो परसों पर मत छोड़े, सवेरे उठ के पढ़ना शुरू, कोई मुश्किल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं भाई। मानो कोई 6 बजे उठता है अपने काम बिजनेस जॉब के लिए, 5:30 उठ, इतना ही तो करना है और कुछ, कोई कठिनाई नहीं। वाणी के पढ़ने से, समझ लेने से समझो हमारा सब काम हो गया। ध्यान आ गया कि वो एक परमात्मा अनादि अक्षरा तीत श्री राज्य महाराज है, रहते कहाँ हैं, परम धाम में, हम उनकी आत्म हैं, हमारा भी असल ठिकाना वो है। देखो एक सिर वाणी पढ़ने से कितना कुछ ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाए। फिर हम मिथ्या माया जोवा माटी यहाँ आए हैं, क्या कहा था कि हम भूलेंगे नहीं, पर इस माया ने भुला दिया। और अब सूर्य निकला, एक ज्ञान रूपी सूर्य, इसने हमें आके, जैसे आदमी रात को सो रहा है तो बेहोश पड़ा है, कोई पता नहीं होता, जब उठते हैं घर की सुध आ जाती है, काम की सुध आ जाती है, अपनी सुध आ जाती है, उठते नहाते धोते हैं। इस वाणी ने क्या किया, हमें जागृत कर दिया, उठा दिया अंधारे में से और सुध दे दी निज घर की। फिर हुई तुम्हारे कारण आप प्राणा जी कहते हो सुंदर सा जी, अगर तुम माया में ना आए होते तो ये वाणी कभी भी मैं लेके दुनिया में आता ही नहीं। करोड़ों बार दुनिया बनी है ना, पहले क्यों नहीं पार ब्रह्म परम धाम की वाणी लेकर के आ। कहते क्यों, क्योंकि मैं कभी भी अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकता, और जो आत्माएं परम धाम की वो मेरे से अलग नहीं हो सकती, मैं किसी की माला सुमरण करने से नहीं आ रहा। राज जी कह रहे हैं मेरा संबंध ऐसा है कि मैं तुमसे जुदा हो ही नहीं सकता। आप जब आए तो मुझे भी आना पड़ा, जब मैं आया तो ये सोच के भी इनको पहचान कैसे होगी। तो पहचान की वाणी परम धाम के जागृत बुद्ध पराशक्ति से लेके आया। क्यों? अब जो जो सुंदरता इस वाणी को पढ़ेगा उसको राजी कहते हैं मेरी पहचान पहचानियों इस वाणी से, तो तुम्हें पहचान हो जाएगी। तुम कौन हो ये पहचान हो जाएगी। तुम्हारा घर कहाँ है उसकी पहचान हो जाएगी। इतनी दुनिया है। अरे भैया आजमाओ कभी ना कभी, आपको हजारों गुरुओं से वास्ता पड़ता होगा, उन्हें यही पूछना कि मैं कौन हूं और मैं आया कहां से हूं, मेरा घर कहां है और शरीर छोड़ने के बाद मैंने जाना कहां है, कोई बता दे तो कह दे, है ना। लो ज्ञान है स्वामी जी का, खोजो। अगर दुनिया में कोई बता दे बेशक पानी पड़ना छोड़ जाओ, इससे ज्यादा ठोस और स्ट्रॉन्ग बात क्या हो सकती है। और फिर कहते क्या है, हुई तुम्हारे कहने ओनली फॉर योर सेक ये वाणी आई। और दुनिया को सुना भी लेना, एक ही बात कहा करे भाई हमें तो समझ आती नहीं। क्यों नहीं समझ आती? कि आज दिन तक ना तो ये वाणी किसी ने सुनी और ना किसी ने सुनाई, तो उन विचारों को समझ क्या है। उनको इतना स्वामी जी ने कह दिया है, सुनियो दुनिया आखिरी, बड़े भाग्य हैं तुम, तुम्हारे इतने ही बड़े भाग्य हैं। जो किन कानों ना सुनिया, जो आज दिन तक तुमने सुना ही नहीं पारब्रह्म कौन है, क्या स्वरूप है, क्या श्रृंगार है, क्या उनकी लीला है, आओ दीदार करो खसम, साक्षात उनके दर्शन करो। इसलिए उनको का बड़े भाग्य हैं तुम, तुम्हारे बड़े नसीब अच्छे हैं। हमें ये सब कुछ नसीबों से नहीं मिला, तुम भी कह देना कि हमारे नसीब हैं ना। नसीब बाय बॉडी नॉट बाय सोल, हमको मूल संबंध निस्बत से मिला। संबंध कह लो निस्बत कह लो एक ही वस्तु है। अगर हमारा राज्य के साथ संबंध ना होता तो ये कभी भी वाणी हमें भी सुनने को ना मिलती। मानो हम ही भारत से ही आए, तो और भी कितने हजारों लोग हैं जो भारत से यहाँ आए, उनको क्यों नहीं मिल रही। फिर इंटरनेट पे भी चढ़ गई, क्या किसी ने पढ़ा रहा होता रहता है, हजारों धर्मों की रिपोर्ट आती रहती, उनको दर्द ही नहीं होगा। और ये दर्द कौन लगाएगा, हमें भी नहीं पहले था। राज्य स्वयं जाके धनिये पकड़े, जहां जहां उनकी आत्म है उनको खुद निकाले और निकाल के चरणों में लाएंगे, ला के फिर ये समझाएंगे, ये राज्य का काम। मीडिया कोई ना कोई तन तो पकड़ेंगे, तन से हमें कह देंगे। हमारा संबंध उस अक्षरातीत के साथ है, उनके लिए कहते हैं पहचानो सुंदर साहब जी पहचानो। त्रैविध दुनी ठौर की, कि जिस मेले भंडार बाजार में आए हुए हो इस दुनिया के, इसमें तीन प्रकार की दुनिया है और उनका ठिकाना तीनों का जुदा जुदा है। तीन प्रकार कौन है? एक तो जीव सृष्टि है, उनका ठिकाना वैकुंठ और स्वर्ग आगे। तो वही कर्मकांड करें, ये जितने भी सारे धर्म हैं सब वैकुंठ से आगे जाने वाला कोई नहीं। उनका उपदेश क्या रहेगा? अच्छे कर्म करो ताकि अच्छा वो हो जाए, ताकि अच्छा ज्ञान लो, ये करो अच्छा जन्म मिले। तो यदि फिर जन्मना फिर मरना तो फिर गीता काफी है। जो कहते हैं अर्जुन कहते हैं हे भगवान मुझे ये बताओ अच्छा जन्म क्यों, अच्छे कर्म क्यों करें? अच्छे कर्मों का फल भुगतने के लिए भी तो फिर दोबारा जन्मना पड़ेगा, मुझे नहीं अच्छे कर्म करने, मुझे तो जन्म और मरण से छुड़ा। क्योंकि अर्जुन ने देख लिया था कि दुख क्या होता है जन्म और मरण का, जो सुंदर साहब जी आज हमारे अनुभव में नहीं आ सकता, क्योंकि अब हम बाहर हैं, माता के पेट में हो तो पता चले ना। वो उनको दिखाया गया कि देख एक जन्म में कितना दुख होता है जब 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है, और 84 लाख बार ऐसे दुख उठा के ये मनुष्य मिला। और फिर इसके अंदर क्या विशेषता है, थिंकिंग पावर, ब्रेन, अकल जिसको कहते हैं। अब चाहे उस अकल को माया की तरफ लगा लो और चाहे उस अकल को राज्य की तरफ लगा लो, तो समझ आती है। क्यों? संस्कृत में नहीं, कोई इंग्लिश कोटेशंस में नहीं, या कोई ऐसी भाषा नहीं है कि हम समझ ना सके। त्रैवेद दुनी ठौर की चले 3 विध माहे, उनकी चाल तरीका भी 3 तरह का होगा। जो जीव सृष्टि है, लाख यत्न कर लेना, वो कभी भी कर्म कांड छोड़ सकेगी। उनके मगज में एक रह ना बाबा ना, वाह वडलों की रीति तोड़ दे, हम नहीं तोड़ सकते, वो जीव सृष्टि है। और जो ईश्वर सृष्टि है वो कर्म कांडों से बाहर भक्ति, माला, जप, तप, पाठ, इसमें लग जाए। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो अपने धनी की पहचान के बिना रह ही नहीं। कहते हैं ये लक्षण है उनके, क्योंकि ज्ञान सुधी ब्रह्म सृष्टि भूली हुई है कोई आत्म, उस बिचारी का क्या दोष है। और इतने मेहरबान कोई मिलेंगे, राजी महाराज बगैर माफी मांगे माफ कर देते, माफी नहीं मांगनी पड़ती कि हमने पाप करे थे भूल गया। कहते ना, जब लग भूली नींद में जाओ तब लग नहीं दोष, मैंने माफ किया है कोई ऐसा लाओ। और जितने भगवान आए वो क्या कहते हैं, मैं तो कर्मों का फल दूंगा और जिन्होंने बुरे कर्म कर रखे हैं उनका सबसे पहले मैं नाश करूंगा। राणा जी कहते हैं अगर मैंने भी उसी हिसाब से किया, देन व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन माई सेल्फ एंड देम, फिर तो लोग मुझे भी भगवान कहें ना। मेरे नाम से ही पहले राज्य महाराज कहते हैं क्या लिखा हुआ है, अति कृपालु और अति दयालु। तो फिर कृपा और दयालुता क्या हुई, कहते ना मैं सबको माफ कर दूं। ये है पूर्ण ब्रह्म। अब कहो जी और कोई भगवान है, लाओ दिखो। राम ने भी कहा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जा सकीन तस फल चाखा, उसको भुगतना पड़ेगा। सोई जो है कर्मों का हिसाब सारा गीता में लिखा है, सोई कर्मों का हिसाब गुरु नानक देव जी की वाणी में लिखा है, सोई कुरान में कहते हैं कि जैसा अमल करोगे भी वैसा भुगतना पड़ेगा। हम कर्म कहते हैं वो अमल करते हैं। तो ये सारी चीजों का टोटल लगाओ। और स्वामी जी जिन्होंने तात्म भी नहीं मिला, कोई प्राणा जी को जानता ही नहीं है, उनको भी कह दिया, कह रहे भाई क्या देख ही रहे हम दुनिया, जो इनको ना करे अखंड। ये तो कम से कम है, इससे कम स्वामी जी दया ही नहीं कर सकते। इससे जैसे मानो बहुत बड़ा बैलेंस और एक उनको उठा करके सेंट दे दें तो उसका क्या जाता है। इतना है सिर्फ दुनिया को एक सेंट देना, इससे कम भी दे तो दे क्या। स्वामी जी कहते हैं इससे मैं कम दूं तो क्या करूं, मैं अनादि अक्षर तीत हूं, फिर कैसे एज लाइक दैट। पारस होता है ना पारस, वो यदि आप भूल से भी ओल्ड से ओल्ड सड़े से सड़े लोहखंड के साथ यूं कर दो, सोना था जैसे सोना, अगर वो नहीं बनाता तो वो पारस मनी नहीं कहलाता। कहते भाई जब दुनिया में आ गए, परम धाम की सारी वाणी आ गई, अरक्षातीत के चरण कमल इस धरती पे आ गए, तो ये ब्रह्मांड अब अखंड हो गए। उनके आ जाने से ये जो है दुनिया अखंड। अब तुलना करो, हम क्या और किसी को पूर्ण ब्रह्म कह सकते हैं? परम नाम की वाणी से छोड़ दो, कंपैरिजन करिए। तो फिर ऐसा चांस जब हमें मिल रहा हो फिर कुछ करना नहीं, कोई कष्ट नहीं उठाना, कुछ यज्ञ नहीं, दान नहीं, पुण्य नहीं, कुछ नहीं, फक्त उनके चरणों में बैठ के वो बात कहनी है कि राज्य महाराज हमें नहीं पता था, आपकी वाणी ने हमें शुद्ध दी, कि हमारी आत्मा का संबंध आपके चरणों से है, इसलिए मोह अंगनानी। बोलो क्या तकलीफ। फिर दूसरे भगवानों के मंत्र होते हैं, ओम नमः शिवाय हर हर, ओम नमः शिवाय हर हर, गायत्री का पाठ करो, जिस जिस भी मंत्र का याद करते रहो, विधि होती है, इतने लाख जाप करो तब ये फल मिलेगा। और यहाँ है ही कुछ नहीं, एक इतना ही कहना है, मोह अंगनानी अविदार, राज्य के चरणों में पालो बन।